ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
आज हम श्रीमद्भागवतम का दूसरा स्कंद अध्याय 8 श्लोक संख्या 28 सत गोस्वामी आगे कह रहे हैं। प्राह भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम ब्रह्म कल्पे उपागते। प्राह भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितं ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तं ब्रह्म कल्प उपागते। प्राह भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितं ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तं ब्रह्म कल्प उपागते। प्राह भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तं ब्रह्म कल्प उपागते। प्राह कहा भागवतम तत्वज्ञान नाम नामक पुराणम उपवेद ब्रह्म संहितम वेदों के अनुकरण में ब्रह्मणे भगवान ब्रह्मा से भगवत प्रोक्तम भगवान द्वारा कही गई ब्रह्म कल्पे उस युग में जिसमें सर्वप्रथम ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है उपागते प्रारंभ में ही। अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा उन्होंने महाराज परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देना यह कहकर प्रारंभ किया कि इस तत्व ज्ञान को सर्वप्रथम स्वयं भगवान ने ब्रह्मा से उनके जन्म के समय कहा। भागवत उपवेद है और वेदों के ही अनुकरण करता है। श्रीमद् भागवत तत्व ज्ञान यानी कि भगवान का विषय है। इस महान ज्ञान को न जानने के कारण निर्विशेषवादी सदैव भगवान के सगुण रूप को ठीक से प्रस्तुत नहीं करते। श्रीमद् भागवत वेदों तथा तत्व ज्ञान का ही अनुकरण है। इस ज्ञान को सीखने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह श्री सुखदेव के प्रतिनिधि के शरण में जाए और महाराज परीक्षित के पदचिन्हों का अनुसरण करे। वह अज्ञानतावश उसकी व्याख्या का प्रयास करके भगवान के चरण के प्रति अपराध न करे। अभक्तों द्वारा हानिकारक ढंग से श्रीमद् भागवत की व्याख्या किए जाने से इसको समझने में काफी अराजकता उत्पन्न हुई है। जिज्ञासु को चाहिए कि यही वह तत्व ज्ञान जानने का इच्छुक हो तो वह इस ढंग से सतर्क रहें। अंतिम श्लोक भी हम ले लेते हैं। यद यत परीक्षित वृषभ पांडुनाम अनुपृच्छति आनुपूर्वण्ये तत्सर्व माख्यातम उपचक्रमे। यद्य जो जो परीक्षित राजा ऋषभ श्रेष्ठ पांडुनाम पांडुवंश में अनुपृच्छति पूछे जाते हैं, अनुपूर्विण्य आदि से अंत तक तत् वह सब सर्वम पूर्णतः आख्यातुम वर्णन करने के लिए उपचक्र में अपने आप को तैयार किया। अनुवाद तात्पर्य, उन्होंने अपने आप को राजा परीक्षित द्वारा जो कुछ पूछा गया था उसका उत्तर देने के लिए तैयार किया। महाराज परीक्षित पांडु वंश में सर्वश्रेष्ठ थे, अतः वे उचित व्यक्ति से उचित प्रश्न पूछ सकने में समर्थ हुए। प्रभुपाद बताते हैं कि महाराज परीक्षित ने बातों को यावत स्वरूप में जानने के लिए अनेक प्रश्न पूछे, जिनमें से कुछ अत्यंत उत्सुकतापूर्ण थे, किंतु शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं कि वही उसी क्रम में उत्तर दिए जिस क्रम में शिष्य प्रश्न पूछे, किंतु सुखदेव गोस्वामी ने अनुभवी शिक्षक होने के नाते सभी प्रश्नों का उत्तर क्रमबद्ध रीति से दिया, जिस रूप में उन्हें शिष्य परंपरा से प्राप्त हुए थे। उन्होंने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, किसी को छोड़ा नहीं। इसी प्रकार भगवत श्रीमद भागवत के द्वितीय स्कंध के अंतर्गत राजा परीक्षित के प्रश्न शीर्षक अष्टम अध्याय का भक्ति विधान तात्पर्य हुआ। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणारघुनाथं अनंत सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणां ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्री हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्राह भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम ब्रह्म कल्प उपागते। उन्होंने महाराज परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देना यह कहकर प्रारंभ किया कि इस तत्व ज्ञान को सर्वप्रथम स्वयं भगवान ने ब्रह्मा से उनके जन्म के समय कहा। श्रीमद् भागवत के उपवेद हैं और वेदों का ही अनुकरण करता है। यद्यत् परीक्षित वृषभ पांडुनाम अनुपृच्छति आनुपूर्वेण्य तत्सर्व माख्यातमुपचक्रमे। उन्होंने अपने आप को राजा परीक्षित द्वारा जो कुछ पूछा गया था उसका उत्तर देने के लिए तैयार किया। महाराज परीक्षित पांडु वंश में सर्वश्रेष्ठ थे, अतः वे उचित व्यक्ति से उचित प्रश्न पूछ सकने में समर्थ हुए। तो यहां हमें कई सूचना मिलती है कि ये भागवतम क्या है और सर्वप्रथम भगवान ने किसको निमित्त बनाकर इसका प्रचार किया और उनको आदेश देते हैं कि तू विस्तार कर। इसलिए भगवान से ही गुरु शिष्य परंपरा चालू हुई है। ऐसी गुरु शिष्य परंपरा भगवान से चार व्यक्तियों को मिली है, ब्रह्मा को, शिव जी को, लक्ष्मी जी को और चार कुमारों। इन चारों की उपस्थिति देखें तो अन्य जीवों से काफी कुछ अलग सी ही है। ये इतने शक्तिशाली हैं कि भगवान अपना निजी विस्तार इनमें करते हैं। कहते हैं कि कभी कभी ये प्रथम जीव ब्रह्मा जीव की कोई लायकात न होने के कारण स्वयं अपना रूप बनाते हैं, स्वयं ब्रह्मा बनकर आते हैं कई कई कल्पों में। लेकिन हर एक जीवों को भी मौका मिल सकता है, इसलिए ब्रह्मा प्रथम जीव है। अन्य पोजीशनों के लिए जीवों को मौका नहीं मिलता, जबकि शिव जी स्वयं ब्रह्मा पैदा होते हुए उनका मूल रूप सदाशिव में भगवान स्वयं प्रकट करते हैं और गुणों के स्वामी बना देते हैं, माया के स्वामी। उनके द्वारा ही तो ये भौतिक गुण बनते हैं। इसमें शिव जी तमोगुण का अधिकारी बनते हैं, यानी कि भगवान ही विशिष्ट रूप से अपना विस्तार करके या परावर्तन करके, यदि ब्रह्मा बनते हैं तो परावर्तन करते हैं, शिव जी बनते हैं तो भी परावर्तन करते हैं, लेकिन दोनों परावर्तन की पद्धतियां अलग है। ब्रह्मा के लिए ऐसा नहीं कहा जाता है जैसे शिव जी के लिए कहा जाता है कि दूध का परावर्तन दही में हुआ वो शिव जी के लागू होता है, लेकिन ब्रह्मा के लिए नहीं कहते, नहीं, उनको जीव को सर्वप्रथम मौका देना है, क्योंकि भगवान की प्रतिकृति जीव को बनाया है, इसलिए भगवान जो करना चाहते हैं उसका मिथ्या अनुकरण और ईर्ष्या भाव से, कल से दिखा हमें, तो ईर्ष्या भाव से अनुकरण करना चाहता है, तो चल तू भी मौका प्राप्त कर, कैसे तो ब्रह्मा बन सकता है। तो ब्रह्मा रजोगुण यानी कि प्रवृत्तिशील, अनुकरण करने के लिए प्रवृत्ति जो करता है वो रजोगुण से प्राप्त है, इसलिए ब्रह्मा जी रजोगुण के अधिकार प्राप्त करते हैं, यानी कि इनके स्वामी बनते या इनका रजोगुण का अवतार कहलाता। ब्रह्मा ही एकमात्र सभी जीवों में प्रथम जीव होने के कारण भगवान उसको अपना रजोगुण का अवतार कह सकते हैं। अन्य जीव सभी ब्रह्मा को छोड़कर सभी जीव भगवान का विस्तार हो सकता है लेकिन अवतार नहीं हो सकता, कोई जीव अवतार नहीं बन सकता, भगवान का विस्तार हो सकता है, लेकिन ये सारे जीव ज्यादातर ईर्ष्यालु होते हैं ना, इसलिए इनको जबरदस्ती से भगवान के सानिध्य से हटाया गया है भगवान की शक्तियों द्वारा, इसलिए विभिन्नांश कहा जाता है। कई जीवों विभिन्नांश उनका नित्य स्वरूप है, फिर भी ज्ञान के द्वारा यानी कि आत्मानुभूति के द्वारा भगवान बनने का भी मिथ्या प्रयत्न करते हैं। जो जबरदस्ती से हटाया जाए तो वो भगवान पर जबरदस्ती लाकर अपने आप को भगवान मानते हैं। जीवों के साथ जो जो व्यवहार हुआ है उसका मिथ्या अनुकरण जीव भगवान के साथ करना चाहता है। तो ये गलत बात है, इसे ईर्ष्या द्वारा ही ये सारी पद्धति संपन्न जो उसके स्वभाव में जुड़ गई है। तो कभी ना कभी ईर्ष्या कर लेता है, किसी न किसी छोटी सी बाबत में भी ईर्ष्या कर लेता है। लेकिन जो तीसरा विस्तार यहां जो बताया जाता है, तब ब्रह्मज्ञानी चतुष्कुमार चार कुमारों द्वारा भी भगवान ने अपनी माता की प्रशिक्षण दिया, तो वो प्रशिक्षित होते समझ सकते कि भक्ति ही तो हमारा एकमात्र साथ। लक्ष्मी जी भगवान की संपत्ति ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य में सबसे ज्यादा बड़ा ऐश्वर्य जिसके माध्यम से सारा मूल्यांकन होता है ऐश्वर्य का, वो उसकी अधिष्ठात्री लक्ष्मी जी। इसीलिए भगवान ने लक्ष्मी जी को भी प्रकट किया और प्रशिक्षित किया उसके बारे में। समुद्र मंथन में लक्ष्मी पैदा होती है तो भगवान को ही वरती है, पहले कृतनिश्चयी, वो किसी को पसंद नहीं करती, नहीं तो देवताओं को पसंद करती न तो दानवों को। तो हम मनुष्य ईर्ष्यालु स्वभाव से लक्ष्मी संपन्न करना चाहते भगवान बिना, कितनी राक्षसी वृत्ति है। हमारे में और रावण में कोई अंतर नहीं है, ये सारी वृत्तियां, ये सारे राक्षस, सारी जो भगवान विरोधी इच्छाएं जो हैं, जो ईर्ष्या द्वारा पैदा हुई है, वही तो दुष्टता के लक्षण बताते हैं, वही तो दुष्चरित्र बनाता है और उसका व्यक्तित्व भी बनाता है। हाँ, तो इन चार माध्यमों द्वारा भगवान ने अपनी महत्ता के प्रशिक्षण दिया है, ब्रह्मा से, शिव जी से, लक्ष्मी से और चार कुमारों से। तो उनके परंपरा में जो अस्खलित रूप से चले आते हैं वो ब्रह्म संहिता श्रीमद् भागवत में जो भगवान का ये सारा रहस्यकरण स्पष्ट हुआ है, स्पष्ट तो ये स्पष्टता प्राप्त करने के लिए किसी के साथ जुड़ जाए। भगवान ने ये साधन बनाया गुरु शिष्य प्रशिक्षण होने का। प्रभुपाद जी कहते हैं इस कलयुग में ये चारे संप्रदाय यानी कि ये गुरु शिष्य परंपरा की जो श्रृंखला है वो तो संप्रदाय, ऐसे नहीं कि किसी ने अपना नया संप्रदाय खोल रखा, वो तो अनधिकृत ही होता है। ये चार अधिकृतता प्राप्त कर रहे हैं और इस कलयुग में भगवान देखो इस छोटे से युग में जीवों को प्रशिक्षित करने के लिए ये युग को इतना दूषित युग यानी कि कली में कितनी ईर्ष्या होगी। कली भगवान का एजेंट बनकर आता है, कालक्रम जो सत्यानाश ही कर देता, सारे चरित्र सच्चरित्र को भी खुले नहीं देता, तो उसका प्रभाव ये कली इतनी दुष्टता क्यों करता है कि जो भगवान को प्रिय है वो गौ का नाश करने लगा है। तो परीक्षित महाराज के प्रश्न को यथोचित उत्तर देने के लिए गुरु शिष्य परंपरा में प्राप्त हुए यथावत ज्ञान को देना, परीक्षित महाराज के सारे उत्तरों को यथावत उत्तर देने के लिए समझाया। इसीलिए भगवान ने सर्वप्रथम ब्रह्मा को प्रशिक्षित किया, क्योंकि सुखदेव महाराज उनकी प्रणाली में चले आते हैं। सही, भगवान ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने व्यासदेव को और व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को प्रशिक्षित किया। इसीलिए जिस ढंग से जिस क्रम से परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया उस क्रम से ही उत्तर देने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने अपने आप को तैयार किया। ऐसे गप्पेबाजी नहीं लगती, क्रमानुबद्ध हमें व्यवस्थित रूप से प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए और कोई छोड़ना भी नहीं चाहिए। ऐसी कोई चीज होनी नहीं चाहिए जो अधूरी रह जाए। मनुष्य की क्षतियां होती हैं, इसीलिए भगवान कहते हैं परिप्रश्न न सेवा। परिप्रश्न यानी बारंबार प्रश्न पूछो, गोल गोल ढंग से प्रश्न पूछकर भी वही तत्व पर आओ। टेढ़ा मेढ़ा प्रश्न करके भी सही उत्तर पर आओ। यानी कि पूछने वाले भी टेढ़े मेढ़े प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन संदर्भ क्या है? जिसकी सजागता जागृत है, आत्मा की जो सजागता है, जो जागृत है इसके प्रति, तो अवश्य वो टेढ़े मेढ़े प्रश्न को भी समझेगा और सही उत्तर देगा। ये कला, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए अनुरूप है, भगवत प्राप्ति के लिए अनुरूप है। यहां श्रीमद् भागवत की पुष्टि ब्रह्म संहितम, ब्रह्म संहितम का अर्थ बताया है प्रभुपाद ने कि वेदों के अनुकरण, वेदों का जो तात्पर्य है उसका ही अनुकरण करना। अनुकरण कोई अंधा नहीं होता और हो ही नहीं सकता। हम लोग ईर्ष्या से अंधा अनुकरण करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वेद और वेदों के तात्पर्य में ही लिखा गया, वेदों में जो जो सिद्धांत बताए हैं उनको उल्लंघन किए बिना उस सिद्धांत को अकबंद रखने वाली कोई भी कृति का हमें आलोचना नहीं करनी चाहिए, इनका अपमान नहीं करना चाहिए। ये भगवान नाम पर चौथा अपराध बताया है। वेदों में वर्णित जो जो बातें हैं तो और उसके अनुसंग में जो लिखा गया है वो सब भगवान नाम की महिमा बताते हुए यदि उसका अनादर करते हैं तो अपराध चढ़ता है। उसको कोई व्यवस्थित रूप से तात्पर्य प्राप्त नहीं होगा, वह भगवत धाम जाने में सफल नहीं बनेगा। तो इस अपराध से तो बचना चाहिए। टू ब्लास्फेम द वैदिक लिटरेचर और लिटरेचर इन पर्सुएंस ऑफ द वैदिक वर्जन, सही ना? वेदों और वेदों के अनुकरण में जो शास्त्र हैं उनका कभी उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। तो ये ब्रह्म संहितम यानी कि वेदों के अनुकरण में लिखा, वेदों में जो जो वृत्तिपरक विषयों की भी चर्चा की गई, क्योंकि जीव तो ईर्ष्या से अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए आया, तो भगवान ने वेद बनाए, सही ना? कृष्ण भोगली गेला जीव भोगवांछा करे, अत वेद पुराण रचिला। वेद पुराण भोगवांछा की व्यवस्था बनाने के लिए कि कम से कम चलो ये मूर्ख लोग तो है ही, भोग करने के लिए आए तो व्यवस्था पूर्ण करें, तो उसमें भी सीखना मिलेगा, प्रशिक्षित हो सकेंगे। ईर्ष्यालु जीव वैसे इतनी गहराई वाली ईर्ष्या एक जन्म में कैसे छोड़ सकता है? इसीलिए वेदों का भी विस्तार करने की आवश्यकता हुई थी व्यासदेव को। यह ब्रह्म संहितम है। तो ब्रह्मणे यानी कि ब्रह्मा जी को भगवत प्रोक्तम, भगवान ने प्रशिक्षित किया ब्रह्म कल्प उपागते, कब? जब ब्रह्मा का जन्म हुआ तब। तो यानी कि श्रीमद् भागवत का संकलन की शुरुआत भी ये ब्रह्म सूत्र द्वारा व्यासदेव ने की स्वयं। जन्माद्यस्य यथा अन्वयाद इतरश्चास्य अभिज्ञ स्वराट। कल हमने दो राट देखे, एक ब्रह्मराट देखा और दूसरा विष्णुराट देखा। अब यहां स्वराट की बात कर रहे हैं। ब्रह्मराट कौन थे? सुखदेव, इनको ब्रह्मराट कहते हैं। विष्णुराट परीक्षित, दोनों में क्या अंतर है? क्या हुआ था कि इनको ब्रह्मराट या विष्णुराट कहा जाता है? नहीं, स्टोरी बताई थी। चलो ब्रह्मराट की बात करो।
राजा परीक्षित को गर्भ में ही भगवान का दर्शन हो गया था,
तो वो विष्णुराट कहलाए। हाँ, तो विष्णुराट करो। चलो पहले
ब्रह्मा जी को भगवान ने सबसे पहले ज्ञान दिया था
ना। ब्रह्मराट तो सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं। सुखदेव गोस्वामी माता के गर्भ में से निकलना ही नहीं चाहते थे 12 साल तक। तो सभी माँ बाप परेशान होते, 12 साल का कोई गर्भ होता है क्या है? उसकी माँ की दशा क्या होगी यदि 12 साल का बच्चा पेट में हो? तो क्यों नहीं निकलना चाहते?
क्योंकि बाहर उन्हें माया पकड़ लेगी, इसलिए।
यानी कि वो ब्रह्मवादी थे, उन्होंने दृढ़ संकल्प अपने माता के गर्भ में ही किया। जब चेतना जागृत होती है वो 7 महीने में होती है, 9 महीने में बाहर निकलता है। ये 2 महीने के बीच उसकी जो दशा, उसकी पहचान उसको हो जाती है। प्रार्थना करता है, भगवान मैं बाहर आऊं, आपका ही दास बना रहूंगा। ये तो इच्छा रही, लेकिन दास बनने की भावना बाहर आते होती नहीं, क्योंकि जबरदस्ती है, उसको रुलाना पड़ता है। तो दास बनने की भावना जब मारपीट होती है तो कैसे याद रहेगी? सही ना, उसको रुलाना पड़ता है, नहीं तो श्वास कैसे लगेगा? जबरदस्ती से उसे मोह माया में फंसाने के लिए माँ बाप बहुत खुश होते हैं, वो बेचारा रोता है और माँ बाप खुश होते हैं। उल्टा व्यवहार, यानी कि वो भी अपने आप को समझने लगता है कि मैं भी चलो हंसी मजाक या अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जीव, दुख के लिए, दुख का अनुभव है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, दुख ये कोई व्यक्ति को सुख थोड़ा देता है, उसे तो दुखी होना पड़ता है। यानी कि दुख की शुरुआत जन्मते ही हो जाती है, और हम जानबूझकर तो दुखी नहीं, दुखी नहीं, चले दूध पी ले, ये ने गुगरी लगावे, उसका आकर्षण खींचते हैं। दुनियावी इंद्रियों को आकर्षित करने के लिए पलने पर हम वो चकड़ी लगाते हैं, घूमती रहे, देखा करेगा, परेशान नहीं करेगा। खिलौने देते ही देते जाते हैं। अब तो खिलौने में भी क्या क्या नवीनता है, अबजों का व्यापार हो रहा है सिर्फ माया में डालने के लिए। तो ब्रह्मा जी उसको जन्मते हुए वही तकलीफ हुई थी, सही। और ब्रह्मा जी जन्मते ही भगवान के नाभि में से जो कमल प्रकट हुआ, प्रकट ये कमल से पैदा हुए, ऐसा विशिष्ट स्थान ब्रह्मा का होता है। ये जो प्रथम जीव है, हम सोचते हैं कि ये ब्रह्मा को कितना बड़ा मौका मिला है, लेकिन वो भी अज्ञानता में प्रकट हुए थे। पहली अज्ञानता अंधकार था, ब्रह्मा अपने आप को जान नहीं पाते, उसका रोना धोना तो बाजू ही रहेगा, लेकिन वो स्वयं अपने आप को भी ढूंढ नहीं पा रहे, चारे ओर इतना गहरा अंधकार था। तो उस समय की बात से परीक्षित महाराज शुरुआत कर रहे हैं, इसीलिए वही प्रणाली में चलने के लिए हमें ये बोलना पड़ता है, ओम अज्ञान अतिमिरांदस्य ज्ञानंजन श्लाघया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे। तो ये गुरु शिष्य परंपरा के लिए अति आवश्यक है कि हम अज्ञानता में ही जन्मे, कोई ज्ञान लेकर यहां नहीं आया है, प्रशिक्षित होना ही पड़ता है। तो व्यासदेव श्रीमद् भागवत लिखने की शुरुआत ब्रह्मसूत्र और उसकी स्पष्टता में ये कहते हैं कि भगवान ही स्वराट होते हैं, स्व यानी खुद, राट यानी कि अपने आत्मनिर्भर, वो ऐसे स्वराट या स्वतंत्र होते हैं। सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म राट कहलाते हैं कि इनकी स्वतंत्रता का माध्यम था ज्ञान, सही। परीक्षित महाराज भक्त होने के नाते विष्णु राट के, तो उनकी स्वतंत्रता का रहता भगवान के पास। तो ब्रह्म राट और विष्णु राट दोनों स्वराट से ही पैदा होते हैं, स्वराट वो भगवान के अनुलक्षण है, स्वराट। तो स्वराट होना प्राथमिक आवश्यकता है, सम्राट होने की आवश्यकता नहीं है। सम्राट, मैं इस संपत्ति का मालिक हूं, मैं ही राजा हूं, सम्राट अपना एम्पायर बढ़ाने वाला सम्राट कहलाता है, झूठा अनुकरण। वेदों का, वेदों के तात्पर्य का अनुकरण होना चाहिए। तब ये ब्रह्म संहिता इस प्रयुक्ति को बताता है कि ये ब्रह्म संहिता यानी कि भगवान ने जो कहा वो वेदों भी भगवान ने ही रचे हैं, और वेदों के तात्पर्य में ही संकलन व्यासदेव द्वारा ही, एक ही व्यक्ति जो भगवान का शक्ति आवेश अवतार कहलाता है, उनके माध्यम द्वारा ही ब्रह्म संहिता हुआ है, यानी कि श्रीमद् भागवत की रचना हुई है। तो उसकी पुष्टि इस ढंग से करते हैं, इसलिए सुखदेव गोस्वामी उत्पत्ति, जीव की उत्पत्ति, जीव की उत्पत्ति के बारे में बताएंगे। जीव की उत्पत्ति कैसे होती है माता के गर्भ, वो भी विस्तृत रूप से बताते हैं, जो आजकल के साइंस भी कह रहा है कि ना ना वो बराबर है। भागवत में तो 5000 साल पहले ये लिखा, तो सारी गायनेकोलॉजी मिलेगी। तो जीव की उत्पत्ति और वो भी ब्रह्म कल्प में, ब्रह्मा जी जो प्रथम जीव बनकर आए हैं, इनको मौका दिया जाता है तो कैसे, तो वहां से शुरू करते हैं। क्योंकि हर एक जीव इसी माध्यम से आता है, भगवान द्वारा प्रेषित होता है, भेजा जाता है। क्यों, क्या कारण है, कोई गप्पेबाजी नहीं कर सकता, व्यवस्थित रूप से ये जवाब मिलना ही चाहिए। ये कोई दिमागी तौर से मेरे ख्याल से तो ये है और दूसरा कह रहा, एक किसी के अपने ख्याल से काम नहीं होता, क्योंकि भगवान स्वराट हैं, सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मराट हैं और परीक्षित महाराज विष्णुराट है। ये पद्धति तो तेने ब्रह्मरदायादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। ब्रह्मा को सर्वप्रथम प्रशिक्षित करने बाद जो जो घटना हुई है कि सारी सृष्टि में कैसे ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पैदा हुए, तो ये तो देवताओं को मोहित करने वाली है। कैसे देवता बड़े बड़े देवता बड़े बड़े अकलमंद होते हैं, इनको भी मोहित करने वाली ये भगवान की ये भौतिक प्रकृति पैदा करने की स्टाइल बताती है। मुह्यन्ति यत् सूरयः, सूर यानी देवता, सारे देवता मोहित हो जाते हैं और ब्रह्मा पर आधार रखते हैं कि ब्रह्मा ये मोह का स्पष्टीकरण करो कैसे हुआ है। तो सुखदेव गोस्वामी उनकी परंपरा में आकर ऐसे प्रश्नों का स्पष्टीकरण करते हैं कि आकाश में से पहले वायु हुआ, वायु से अग्नि आई, अग्नि से पानी आया और पानी से पृथ्वी आई, सूक्ष्म से स्थूल वस्तुओं का रूपांतर हुआ और इन रूपांतरों में सिर्फ भगवान की दृष्टि इन तीनों गुणों के साथ मिलती जुलती रही। दृष्टि का कोई रूपांतर नहीं होता, लेकिन ये दृष्टि इतनी पावरफुल है जो बदलती नहीं, क्योंकि वो आध्यात्मिक है, लेकिन भौतिकता का रूपांतर करती रहती है। यूं पलटा हुआ, अरे आकाश में वायु, वायु में अग्नि, अग्नि में पानी और पानी में पृथ्वी, ये क्रम, ये पानी में से पृथ्वी कैसे पैदा होती है, ये पानी का ग्लास है, ये पानी उड़ जाता है गर्मी में तो नीचे क्या रहेगा, पानी में जो द्रवित पदार्थ है ना वो पानी में डाग पड़ता है, तो उसमें जो जो द्रवित पदार्थ अब बाहर निकला है वो तो पृथ्वी के अंश है। समुद्र का पानी ले लो, क्या निकलेगा, नमक, द्रवित है ना, जब पानी उड़ जाता है तो इसी तरह सारी पृथ्वी में तीन भाग पानी बचा है, एक भाग ही पृथ्वी का दिखाई सपाटी दिखा रही है, तो लेकिन ये उड़ता रहता है और जब उड़ता है तो आकाश में ही रहता है और बर्फ के रूप में गिरता है। अभी लोग घबरा रहे हैं कि पानी की सपाटी बढ़ रही है, सब डूब जाएंगे, बंबई कितना डूबेगा पता है, हमने अखबार में करीबन 4-5 दिन के पहले की बात है, हमने देखा ये लोग घबरा रहे हैं। न्यूजीलैंड के नीचे वो जो दक्षिण ध्रुव का प्रदेश है इसमें भारत से भी बड़ा एक बर्फीला पहाड़ अलग हो गया, टूट गया, पहाड़ जितना विशाल वो 7 किलोमीटर ऊंचा है, लेकिन भारत जितना विशाल है। अब चिंता करते हैं क्योंकि वो फोटो आ गई कि तो पहले तो जुड़ा हुआ था, अब क्या हो गया, ये टूटा और ये आर्कटिक समुद्र जो है, दक्षिण ध्रुव का जो समुद्र है वहां तैर रहा है, अब ये पिघल भी रहा है, सारे भारत को डुबो देने वाली ये इसकी साइज है, 7 किलोमीटर ऊपर पानी चढ़ जाएगा, तो इतना पानी सारे समुद्र में तो फैलाएगा ना, तो अन्य जगह सारी सपाटी ऊंचे आ जाएगी पानी की, तो कितने शहर डूबेंगे, जो जो समुद्र के किनारे शहर बसे हैं, न्यूयॉर्क देखो, ये देखो, सब ये पानी इतना उपद्रव बचाएगा, सुनामी आती है तो क्या होता है। मनुष्य अपनी सत्ता का हंकार कर रहा है, वो तो चौपट में हो जाएगा क्षण भर में, पल भर में। एक बार प्रभुपाद जी 1974-75 की बात है, ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न शहर है जो समुद्र के किनारे हैं और ये पैसिफिक ओशन है और दक्षिण ध्रुव की ओर ही वो शहर पड़ता। तो वहां बैठे बैठे लेक्चर देते थे भौतिक प्रकृति के कड़े नियमों पर। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ये सारा मेलबोर्न शहर भी एक लहर में खत्म हो सकता है, ऐसी लहर आती है समुद्र में। तो तब तो किसी को पता नहीं था कि प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। तो कहीं 4-5 साल पहले जो सुनामी आया उससे याद करने लगे कि प्रभुपाद जी ने कहा था। सुनामी ने कितनी तोबा मचा दी अपने भारत में, श्रीलंका में, सब जगह कितने लाखों आदमी साफ कर दिए एक ही लहर। ये तो कुछ नहीं है, भौतिक प्रकृति भगवान के द्वारा स्वयं संचालित है। यदि मनुष्य ईर्ष्या के द्वारा उसका दुरुपयोग करता है, उसको प्रदूषित करता है, हवा पानी सब भौतिक सृष्टि जो भगवान ने जिस ढंग से बनाया उसमें जो यदि प्रदूषण ही करता है तो उसका भोग उसको ही बनना पड़े, चाहे आप कितने ऊंचे पहाड़ पर क्यों न रहने चले जाओ, काल पीछा छोड़ेगा नहीं। तो अकलमंदी को इशारा काफी है, भगवान से ईर्ष्या बंद कर दे और व्यवस्थित रूप से गुरु शिष्य परंपरा में आकर प्रशिक्षित हो। तो जैसे परीक्षित महाराज ने सारे प्रश्न किए हैं, ना समझ होते हुए कोई ऐसे भागवत सत्ता सुनने के लिए बैठ नहीं जाता, वो तो कृतनिश्चय थे, वो जानते थे, फिर भी हमारे मूर्खों के लाभ के लिए ये कथा का आयोजन हो रहा है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, यदि सुनने की इच्छा हो तो परीक्षित महाराज का ही अनुसरण करना चाहिए, और कहने की इच्छा हो तो सुखदेव गोस्वामी का ही अनुसरण करना चाहिए। हमें दूसरों की स्टाइल अपनानी नहीं चाहिए। लेकिन भागवत धर्म कहता है कि नित्यम भागवत सेवया, हर रोज, इसलिए ऐसे क्लास होने चाहे, एक व्यक्ति भी क्यों ना हो, भागवत होना ही चाहिए। कोई नहीं है तो प्रभुपाद जी के आप सुनोगे और दीवार सुनेगी, लाभ तो है ही नहीं। कोई नहीं है फिर भी भागवत करो, ये नित्यम होना चाहिए, नित्यम। चलो कोई नहीं आया, आज मारो गोली, हम हड़ताल पर जा रहे हैं। भक्तों हड़ताल पर कभी उतरते नहीं। नित्यम भागवत सेवया, नैष्ठिकी भक्ति करनी है ना, इसलिए नष्ट प्रायेषु अपद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। नैष्ठिकी भक्ति पैदा करना है तो प्रभुपाद जी ने यह नियम दिए, ऐसे नहीं कि उन्होंने एक अपनी प्रथा छोड़ के गए, नहीं, सबका कारण होता है नित्यम भागवती। तो उसी ढंग से प्रभुपाद जी का ये सारे भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। दूसरे अध्याय 9 का शीर्षक है श्री भगवान के वचन द्वारा उद्धरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। गप्पे मारने की कोई आवश्यकता नहीं, भगवान के वचनों का उद्धरण करना। हम लोग भगवद गीता का जो भगवान के सीधे वचन उसका उद्धरण करते हैं, करना ही पड़ता है, नहीं तो प्रामाणिकता नहीं रहेगी और न तो अधिकृतता रहेगी। दोनों आवश्यक होता है, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं जिनका सारे लोग अनुकरण करते हैं, तो उनके वचनों दोहराते हुए यदि स्पष्टता करते हैं तो परम सत्य की अनुभूति होने की संभावना है, नहीं तो नहीं। ज्यादातर मायावादी लोगों भगवत गीता में ऐसा ढूंढ ढूंढ के बोलते हैं जो न तो उसके आगे का देखते हैं न पीछे का देखते हैं। सारी भगवत गीता भगवान के व्यक्तित्व को प्रकट करती है, जबकि मायावादी लोग भगवान को अप्रकट करके मार देना चाहते हैं और स्वयं भगवान बनना चाहते हैं। आप देखिए तो वही सारे श्लोकों का उद्धरण करेंगे और गुमराह करेंगे, कोई संदर्भ नहीं देते। यहां तो सारे शास्त्र का संदर्भ प्रभुपाद जी देते हैं और मुक्त कंठ से। हमें सारे शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जिंदगी बहुत छोटी है, कम से कम प्रभुपाद जी ने जो उद्धरण किया है वो उसको कंठस्थ करना चाहिए और स्पष्टता करनी चाहिए। तो किसी को कोई प्रश्न है? सही है, तो ब्रह्मा जी के ही तो बेटे थे ना, वो ब्रह्मा जी की इच्छा के विरुद्ध थे, वो प्रजापति नहीं बनना चाहते, लेकिन ब्रह्मा जी के मुख में भगवान की प्रतीति तो थी, तो वो तो बोलते ये सुनते रहते थे, तो इनकी जिज्ञासा वृत्ति जागृत हो गई। सही, वो जागृत होने के कारण वो वैकुंठ में भी गए हैं सब प्रकार, और तुलसी देखकर नमन भी किया। सही, उसके बाद वो वापस आ गए, लेकिन भक्ति तत्व समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि ज्ञान मार्गी थे भगवान की पुस्तक, तो उन्होंने शंकरशन भगवान से प्रशिक्षित होने का सोचा। तब चित्रकेतु राजा अभी उसी समय थे, शंकरशन और वहां ये सभी प्रशिक्षित हुए थे। चित्रकेतु राजा विशुद्ध भक्त बने थे और उन्होंने सारी पृथ्वी पर ऐसा राज्य किया, फिर भी पार्वती के श्राप का भोग बने थे, तो पार्वती नाम समझ हुई उसमें। चित्रकेतु राजा तो भक्त थे, भक्त की आलोचना करने के लिए पार्वती को भी शिव जी प्रशिक्षित करते हैं, क्योंकि तो माया शक्ति है, तो शिव जी द्वारा प्रशिक्षित होने के कारण वो असली किसकी सेविका है उसे पता चलता है, वो नारायणी कहला। तो चित्रकेतु राजा और चार कुमार शंकरशन द्वारा प्रशिक्षित प्रशिक्षित हुए तो भागवत में उसकी कथा आती है। तो वहां से भी चले आने के कारण आज निम्बार्क संप्रदाय कुमार संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर निम्बार्क संप्रदाय से जुड़ा है, लेकिन वहां देखो भोग विलास ज्यादा है। लोग अर्चना जामे बिहारी जी को सकाम भक्ति में जुड़ते हैं, जबकि चैतन्य महाप्रभु ने निम्बाकाचार्य उस समय थे। तो ये संप्रदाय के पास यानी कि कुमार संप्रदाय के पास राधा तत्व और गोपी भाव स्वीकार किया, इसीलिए वहां से राधा कृष्ण की युगल मूर्ति ये संप्रदाय के आधार पर अपने संप्रदाय में आई। विष्णु तत्व की सर्वोपरिता रामानुजाचार्य ने सिखाए, यानी कि वो फिलसफी और अपनी फिलसफी भी बहुत समान पर, फिर भी मध्वाचार्य संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा ली थी। तो मध्वाचार्य और रामानुजाचार्य में थोड़ा ही अंतर है, विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुज का था, लेकिन उसका स्पष्टीकरण और आगे बढ़ाना शुद्ध द्वैत में वो मध्वाचार्य ने। तो जीव और आत्मा की सनातन व्यवस्था पर इन्होंने जो भार दिया है वो बहुत उचित बताई गई है, शास्त्र द्वारा प्रमाणित है, तो वो स्वीकार। लेकिन रामानुजाचार्य संप्रदाय की ये जो अर्चना पद्धति है और भगवान विष्णु की सर्वोपरिता, तो ये दाखल ये स्वीकार। दो रुद्र संप्रदाय जो विष्णु स्वामी संप्रदाय से आता है उनमें से भी परम तत्व इत्यादि कई दो चीजें स्वीकार, और अपने ब्रह्म संप्रदाय में गुरु शिष्य परंपरा की महत्ता, ये दोनों ये नवद्वीप महात्म्य में बताते हुए ये बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु ने चार संप्रदायों में से दो दो सर्वश्रेष्ठ शिक्षाएं दी और उसे कृष्ण भावनामृत कहते हैं। समझाने के लिए गुरु शिष्य परंपरा द्वारा मध्वाचार्य संप्रदाय से जुड़े हैं जो ब्रह्मा की ओर जाता है, लेकिन चार संप्रदायों में से शिक्षा भी तो ग्रहण करनी चाहिए। तो सर्वश्रेष्ठ चैतन्य महाप्रभु ने हमने चुन चुन कर दे ही दी, इसलिए हम बहुत सारा गहराई में उतरने का दूसरों संप्रदाय के साथ प्रयत्न नहीं करते, समय की बर्बादी। यहां हमें सारी चीजें स्पष्टता से प्राप्त, कोई डिटेल में जानना चाहता है तो अलग है, लेकिन वो आवश्यक है, सामान्य भक्तों को आवश्यक है। जो कुछ डिटेल में कहना चाहता है उसका हम अवरोध भी नहीं करते, लेकिन वो स्वीकारने की भी आवश्यकता नहीं। प्रभुपाद जी ने जितना दिया है काफी, उस पर विश्वास रखो। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त देखो। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैंने अपनी किताबों में सब कुछ दिया है। जब उसका संदर्भ लो, इसलिए प्रभुपाद जी की किताबों का बहुत महत्व होता है और पढ़िए, पढ़ो, बिना पढ़े प्रशिक्षित नहीं होता। हम न तो कोई श्रुतिधर बैठे हैं कि सुनने से ही पढ़ लेंगे, वो जमाना गया, हमारा सुनने का ढंग भी बदल गया। क्या हम लोग जैसे सुनते हैं तो वैसे भवंती रद्द करना रसायन कथा होता है, कान और हृदय में संचार होता है, तो फिर सारी इंद्रियों द्वारा अभ्यास करने की हमें प्रवृत्ति बनानी चाहिए। कानों से सुनना होता है, आंखों से देखना होता है। ये पुस्तकें इसीलिए लिखी, क्योंकि आंख दी गई है तो स्वयं पढ़े, यानी कि बोले, सुने, समझे। पुस्तक वितरण करे, हाथों की सेवा, स्पर्श इंद्रियों की सेवा। उसमें जो रसा स्वाद मिलेगा जीव की सेवा बन जाएगी। उसमें किए गए अनुष्ठानों का पालन करना, उसमें से बहुत सारे वातावरण पलटाने की जो बात है तो उसका ग्रहणेन्द्रिय द्वारा, नाकों द्वारा भी ये वातावरण से प्रफुल्लित होने का भी प्रयत्न करो। पृथ्वीम गंधव्या, पृथ्वी गंध का स्वरूप है, तो हम ये अगरबत्ती इत्यादि जलाते हैं, धूप करते हैं तो सुगंधित करना पड़ता है, क्योंकि ये पृथ्वी का है। तो नाक की सेवा पृथ्वी की सेवा करने से हो जाती है। तो जप करना है ना, तो जप में भी पांच पांच इंद्रियों का इस्तेमाल करना होता है। सही है, लेकिन जो जप करता है तो पांच पांच इंद्रियों को जोड़ता है, वो तो देखना है।
इससे वाला काम हो सकता है ना
राम? सही है, एक एक सेवा में पांच पांच इंद्रियों को जोड़ना होता है। एक एक सेवा, नाम की सेवा जप कर से हो सकती है, संकीर्तन करते भी हो सकती है, पुस्तक का विकरण करके भी हो सकती है, पर इसमें पांच पांच इंद्रिय जुड़नी चाहिए।
पांच ज्ञान इंद्रिया हमको जोड़ना है, पांच इंद्रिया कौन सी? पांचों ज्ञान इंद्रिया जोड़नी है,
ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, सब इंद्रिया।
हाँ, कुल मिला के तो दस है ना, दो जाया
जाए। सही है, और ग्यारहवा मन,
नवा मन है।
पर लेकिन देखो, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, ये तो हुई
दस हो गई ना,
दस और ग्यारहवीं मन, ये सारी इंद्रियों को जब कहते हैं कि पांच इंद्रियों को जोड़े तब ज्ञान मिलता है।
पांच इंद्रिया कौन से हम गिनते हैं?
ये स्पर्श, आंख, नाक भी तुलसी है, तुलसी द्वारा तो ये प्रशिक्षित हुए चार कुमार है, तो क्या हम तुलसी की माला सुनेंगे नहीं? तुलसी पर जप कर रहे हैं, आंखें नाकें सब जगह लगाते हैं ना, जप पूरे हुए।
हाँ,
स्वादेंद्रिय, भगवान का नाम रस चखना, तो पांच इंद्रियों को जुड़ना होता है। कोई मन में जप कर लेता है, जीभ को नहीं, न तो सुन सकता है, न आंख काम करती है, कुछ नहीं, ये गलत धंधा बताया। जिसकी ज्ञानेंद्रियां वैसे ही विकसित हो गई है, वो पहुंचा हुआ उत्तम अधिकारी कहलाता है, वो मन में करे तो उत्तम है, हम उसका मिथ्यानुकरण नहीं कर सकते। इसलिए हमें स्पष्ट रूप से कहने को कहा, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बिना बोले नहीं करना, बिना गिनती नहीं करना। बुद्धि को भी जोड़ने को कहा, बुद्धि थोड़ी इंद्रिया है, लेकिन संकल्प तो बुद्धि करेगा और मन को जरा नियंत्रित रखेगा तो अपने आप इंद्रिया जो घोड़े हैं सीधे चलेंगे। तो बुद्धि के हाथ में ये समझ भी तो होनी चाहिए। जो बुद्धि का उपयोग ही नहीं करता है उसे विकास नहीं, अपने आप कैसे हो सकता है बिना बुद्धि का विकास। लेकिन भगवान कहते हैं तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम येन माम उपायान्ति। बुद्धि योग यानी कि बुद्धि तो भगवान देते हैं यदि हम प्रयत्न करते रहते इसी दिशा में, तभी तो जागृत होने का प्रश्न होता है, नहीं तो प्रश्न ही नहीं उठता। जागृति तब आती है।
जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।